आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे फटाफट से कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रिक सोर्स के तौर पे पहले किसी और एनर्जी को यूज़ करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और हम लोग सर्किट के अंदर करंट का यूज़ करके फैन चलाते हैं या फिर बल्ब चलाते हैं, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारी बैटरी होती है वो सोर्स का काम करती है, उसके अंदर केमिकल मौजूद है बैटरी के अंदर, और बैटरी के अंदर जो केमिकल है उससे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक लो पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ से आया है? वो आया है हमारे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। चार्ज का फ्लो शुरू होते ही करंट जो है वो जनरेट हो जाती है, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। उसके बाद जो करंट जनरेट हुई है उसका यूज करके हम अलग अलग काम कराते हैं। जैसे फैन की अगर बात की जाए तो फैन का रोटेशन एक तरीके का एनर्जी दिखाता है। फैन का रोटेशन मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर फैन चलाते चलाते वो साथ के साथ घूम भी रहा है, साथ के साथ धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। हम कभी आप चलते हुए फैन को थोड़ी देर बाद ऑफ करके आप सिर्फ उसे टच करके देखें तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म हो चुका होता है। तो वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो रोटेट कर रहा है तो वो तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी करंट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाए। कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट भी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है काफ़ी हद तक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते थे कन्वर्ट कराना। इससे हमारा डिवाइस हीट अप होता है तो वो वेस्ट हो जाता है, हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम जो बात करें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का हम कन्वर्जन कराना चाहते थे इनटू कुछ यूजफुल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कराना चाहते थे, हम एक यूजफुल वर्क कराना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट ना हो करके कुछ वेस्ट भी हो जाता है और वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब कुछ कुछ डिवाइसेस जैसे कि टोस्टर्स या फिर आयरन जो होते हैं, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को वो डिवाइस हीट करके ही काम लेना है उसका, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन कराते हैं हीट में और उन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि टोस्टर्स या फिर आयरन। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि मान लो अगर कोई रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और उसके थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है वो कैपिटल आई फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल वी का, और मान लो कि उस रेजिस्टर के थ्रू चार्ज कैपिटल क्यू फ्लो कर रहा है इन टाइम स्मॉल टी। तो ऐसे में जो वर्क डन कराया जा रहा है सोर्स के द्वारा इन मूविंग द चार्ज कैपिटल क्यू, और उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर है कैपिटल वी, तो वर्क डन जो होता है वो होता है कैपिटल वी इनटू कैपिटल क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज फ्लोन इज द वर्क डन। तो वर्क डन हो गया कैपिटल वी इनटू कैपिटल क्यू। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो होता है पावर। तो जो सोर्स ने पावर लगाई है रेजिस्टर के थ्रू कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो कराने में, वो पावर कितनी हो गई? कैपिटल वी इंटू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल टी, विच इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू आई, क्योंकि क्यू बाई टी जो होता है वो तो करंट होता है, आई होता है। तो इससे हमें मिल गया कि पावर जो सोर्स लगा रहा है रजिस्टर में चार्ज क्यू फ्लो कराने में वो कितनी है? कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई है। उसके बाद हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो सोर्स ने लगाई है, एनर्जी वर्क डन जो उसने करा है सोर्स ने, उसका कितना अमाउंट हीट में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हीट का फॉर्मूला लगाया था, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम आप लिखेंगे, तो पावर की वैल्यू तो कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई है, तो कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई इंटू स्मॉल टी हो जाएगा हमारा हीट जो जनरेट किया जा रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस बाय द सोर्स। उसके बाद अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, कैपिटल वी की जगह आई आर लिख सकते हैं, तो हमारा हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू स्मॉल टी। कैपिटल आई स्क्वायर इंटू आर इंटू स्मॉल टी ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बताता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो इस तरीके से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में भी हमने बात कर ली थी, और इसके ऊपर बेस्ड जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसके ऊपर बेस्ड हमने दो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। अब आज की क्लास को शुरू करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 218 पर, और यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर का जो तार होता है जिससे करंट आ रही है उसमें कोई ग्लो नहीं होता है, क्योंकि वो तो वायर से रैप किया हुआ होता है तो उसमें कोई ग्लो आपको नहीं दिखता है। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होती है, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, वो गर्मी भी प्रोड्यूस करता है, साथ में वो ग्लो भी करता है, वो रेड या ऑरेंजिश ग्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है हीटर के अंदर का, जो बेसिकली हीट हो रहा है वही हीट अप करता है आपके रूम को, तो हीटिंग एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और वो एक अलॉय का बना हुआ होता है। अलॉयज आपको पता है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से ही वो ग्लो भी करने लगता है। बर्न इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है, ये बर्न नहीं कर सकता है। ऐसे मटेरियल का ही बना होता है अलॉय कि वो बर्न नहीं होगा इजीली, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्लो करता हुआ दिखता है। अब अगर कॉर्ड की बात की जाए, हमारे हीटर के वायर की बात की जाए, तो उसका जो वायर है वो कॉपर का बना होगा या एल्युमिनियम का बना होगा, तो इनकी रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा ग्लो नहीं करते हैं, ये ग्लो नहीं कर पाते हैं, और हीटिंग एलिमेंट जो है हीटर का वो ग्लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे हीट जनरेटेड पूछा है। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वी इंटू आई इंटू स्मॉल टी। अब कैपिटल वी तो आपको गिवन है 50 वोल्ट, अब आई टी के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो आई टी क्या होता है, बेसिकली चार्ज फ्लो होता है, तो आप लोगों को चार्ज फ्लो ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोगों को पहले करंट निकाल के फिर टाइम से मल्टीप्लाई करके इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को चार्ज ही गिवन है विच इज 96,000 कूलम। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 50 × 96,000 कूलम करना है, तो आपको हीट जनरेटेड मिल जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 96,000 × 50, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.8 × 10⁶ जूल, इतनी हीट जनरेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको फिर से हीट डेवलप्ड ही पूछा है, हीट डेवलप्ड का आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू स्मॉल टी। आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज आपको गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू 20 ओम गिवन है, आई की वैल्यू आपको 5 एम्पीयर गिवन है, और टाइम आपको 30 सेकेंड्स गिवन है, और आपका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 25 × 20 × 30 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 × 10⁴ जूल। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये बताया गया कि कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का है वो तो मैकेनिकल एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार जो ये हीट में कन्वर्जन है ये डिजायरेबल नहीं होता है, हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि उससे डिवाइस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब देखो क्या होगा कि आपका सपोज फैन है, फैन जो है वो रोटेट कर रहा है, ये तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। उसकी अगर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी की कन्वर्जन हीट में हो रही है तो उससे क्या होगा कि फैन आपका जो है वो हीट अप होने लगेगा, वो गर्म होने लगेगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है डिवाइसेस का वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इससे क्या होगा कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर राइज होने से उसका रेजिस्टेंस और राइज करेगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी डिवाइस जो है वो इम्पेयर होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो और कम होने लगेगी। तो इससे कई बार काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं किसी और रूप में, वो हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, तो उससे काफी ज्यादा वेस्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा डिजायर ही यही होता है कि हम उस डिवाइस को हीट अप करना चाहते हैं। तो हमने बात भी की हुई है टोस्टर्स के बारे में, आयरन के बारे में, या फिर आजकल जो आप लोगों के माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, या फिर आप बात करें जो इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं जिसमें आप चाय बनाते हैं, केतली जो होती है चाय की, इलेक्ट्रिक केतली भी आती है आजकल, तो उसमें आप बिजली का इस्तेमाल करके चाय बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, तो ये सारे डिवाइसेस जो हैं इनका, इनके अंदर हमारा डिज़ायर ही यही है कि ये डिवाइसेस हीटअप होने चाहिए, तभी हम उनका यूज़ कर सकते हैं जिस भी रूप में हम उन्हें यूज़ करना चाहें। कपड़ा प्रेस करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करना होता है, अगर आपको चाय बनाना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक केटल को गर्म करना पड़ता है, अगर आप रूम को गर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक हीटर को गर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट ही यही है कि हम इन्हें गर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड फिनोमेना हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इनटू हीट एनर्जी, तो ये यहाँ पर यूजफुल हो जाता है, ये हमारे काम में आने लगता है कि जो फिनोमेना बताया गया था कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू हीट, तो इसका यूज भी हम कर सकते हैं और ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं जिनमें हीट ही हमारा डिजायर होता है, वही यूजफुल वर्क के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस की अगर बात करें तो आज के घर का बल्ब, जिसके बगैर आपको रात के वक्त रोशनी ही नहीं होगी आपके घर में, आप कुछ भी जो काम है वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। आपका बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि लाइट अप करता है, उसी से लाइट एमिट होती है। अब ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बल्ब है उसका फिलामेंट गर्म तो हो लेकिन वो ब्रेक ना हो, मेल्ट ना हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि टंगस्टन जो कि ऐसा मटेरियल है जो हीट अप तो होता है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई है लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाने के बावजूद भी मेल्ट नहीं करता है। जो टेम्परेचर है टंगस्टन का जिस पर ये मेल्ट करे वो टेम्परेचर लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो टंगस्टन इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को सस्टेन कर सकता है, इतने हाई टेम्परेचर तक भी आप अगर टंगस्टन को लेकर जाते हैं तब भी वो मेल्ट नहीं करेगा। और हम बल्ब बनाने के लिए मटेरियल भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे जिससे कि उस मटेरियल को वो हीटअप तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हीट को वो रिटेन करे, रखे अपने पास और वो इतना हीट हो जाए कि वो ग्लो करने लगे लेकिन वो मेल्ट ना करे, ऐसा मटेरियल जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। और ऐसा मटेरियल, एक बिल्कुल अच्छा मटेरियल टंगस्टन का यूज़ करके हम लोगों को ये मटेरियल जो है ये हम यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं एज अ मटेरियल जिसका टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट कर रहा है वो बहुत हाई है और वो हीट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, तो वो हीट सस्टेन करके बहुत हीटअप हो जाता है और ग्लो भी करता है जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है और उसे हम बल्ब के रूप में यूज़ कर पाते हैं। अब हमारे जो बल्ब्स होते हैं उस बल्ब के अंदर आपने देखा होगा जो फिलामेंट होता है उसको कवर किया जाता है, एक ग्लास के मटेरियल से कवर किया जाता है और उस ग्लास के मटेरियल के अंदर गैस भरी जाती है, इनएक्टिव गैसेस भरी जाती हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ताकि जो फिलामेंट यूज़ किया गया है टंगस्टन का उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए, वो और भी ज़्यादा समय तक चले। जो बल्ब हम यूज़ करते हैं उसका फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर का हीट में कन्वर्जन कर देता है, जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो बिजली से उस करंट की सारी मोस्ट ऑफ दी पावर जो है वो हीट में कन्वर्ट कर देता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ पावर को ही वो लाइट में कन्वर्ट करता है और लाइट के रूप में उसे एमिट करता है। इसके साथ एक और बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, और वो है फ्यूज वायर। फ्यूज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके साथ सीरीज में, जब हम उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो उन अप्लायंसेस के सीरीज में हम एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज एक वायर, एक मटेरियल का बना होता है, तो फ्यूज वायर बनाई जाती है, उस मटेरियल से वायर बनाई जाती है, और इस वायर को हमारा जो भी अप्लायंस है उसके साथ में हम फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं, डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते हैं, और फिर उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को हम सर्किट में लगा देते हैं। अब फ्यूज वायर का यूज क्या है? फ्यूज वायर हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूज वायर एक ऐसे मटेरियल से बना होता है, या तो अलॉय से बना होगा या फिर किसी मेटल का बना होगा, सच एज एल्यूमिनियम या कॉपर या आयरन या लेड, इस तरीके से किसी भी अप्रोप्रिएट मेटल का बना हो सकता है या फिर अलॉय का भी बना हो सकता है। अब खास बात यह होती है कि इन सभी मटेरियल्स की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जिसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं। अब यूज करने के पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि कभी कभी आपके घरों में जो करंट आता है वो फ्लक्चुएट होता है, आपको आपकी डिवाइस का, हर एक डिवाइस का एक लिमिटेड रेंज है करंट का जिसे वो सस्टेन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उस डिवाइस में सप्लाई हो जाएगी तो वो करंट की वजह से, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट की वजह से आपका डिवाइस काम करना बंद कर देगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हो हमारे डिवाइस के साथ कि उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पहुंचे और वो काम करना बंद कर दे। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि डिवाइस के सीरीज में एक फ्यूज वायर लगा दिया जाता है कि जब भी कभी लिमिटेड एक रेंज जो करंट चाहिए हमारे डिवाइस को, उससे ज्यादा करंट अगर आता है तो वो फ्यूज वायर क्या करेगा, वो मेल्ट कर जाएगा, वो पिघल जाएगा, और उससे क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगी, करंट ही नहीं पहुंचेगा डिवाइस के अंदर। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, लिमिटेड रेंज से एक्सीडेड अमाउंट ऑफ करंट जो आ रहा है, वो हमारे डिवाइस में पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गई है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर, और हमारा डिवाइस जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। फ्यूज वायर्स जो होती हैं, इन लोगों को इनकेस किया जाता है एक बॉक्स टाइप, एक ट्यूब के जैसे फॉर्म में इनको डाला जाता है वायर्स को, और ये ट्यूब जो बनी होती है ये एक मटेरियल की बनी होती है जिसका नाम है पोर्सिलिन, या फिर इससे मिली जुली इसी तरीके की कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, और एक ट्यूब के जैसा रूप देते हैं, और इसके अंदर हम लोग हमारे फ्यूज वायर को डाल देते हैं, और उसके बाद इसको यूज करते हैं, डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते हैं। और ये जो फ्यूज वायर्स होती हैं ये भी अलग अलग रेंज की मिलती हैं। कुछ फ्यूज वायर 1 एम्पियर के रेंज की होती हैं, 2 एम्पियर की होती हैं, 3 एम्पियर की होती हैं, 5 एम्पियर की होती हैं, 10 एम्पियर की होती हैं, कितनी भी एम्पियर्स की होंगी, जितना एम्पियर का आपको वायर यूज करना है उसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपका डिवाइस कितना करंट सस्टेन कर सकता है। आप चेक करेंगे, मान लो आपका डिवाइस जो है वो सस्टेन कर सकता है 5 एम्पियर का करंट, तो आप क्या करेंगे कि 5 से जरा सा बड़ा वाला आपको वैल्यू का करंट का फ्यूज वायर यूज करना होगा। मान लो आपके पास आपका डिवाइस जो है वो 5 एम्पियर करंट सस्टेन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर डिवाइस में 5 एम्पियर का करंट पहुंच जाए। अब 5 से ज्यादा आता है तब डिवाइस को दिक्कत होगी, तो मान लो अगर 6 एम्पियर का करंट आता है तो हमारे डिवाइस को दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको क्या करना होगा, आपको फ्यूज वायर ऐसा यूज करना पड़ेगा जो कि 6 एम्पियर का करंट आते ही मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों को जो करंट रेटिंग होती है फ्यूज वायर्स की, वो भी चेक करनी होती है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज कर रहे हैं जो कि 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम करता है और उसे 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे आप ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में जो करंट उसके थ्रू पास होगा वो कितना होगा, 1000/220 होगा, क्योंकि 1000 उसकी पावर है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, और आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू VI, तो आपको करंट पता लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, और पावर गिवन है 1000 आपको किलो वाट गिवन है, किलो वाट मतलब 1000 वाट, तो 1000/220 करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट की वैल्यू कितनी है, 4.54 एम्पियर। तो इससे आपको दिख रहा है कि 4.54 एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकता है हमारा डिवाइस, इससे ज्यादा का अगर करंट होगा तो हमारे डिवाइस को प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में आप जो हमारा फ्यूज वायर यूज करने वाले हैं उसकी रेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी रेटिंग 4.54 एम्पियर से जस्ट हायर होनी चाहिए, यानी कि आपको 5 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज वायर यूज करना है सो दैट आपके जो डिवाइस है जो कि 4.54 एम्पियर सस्टेन कर सकता है, उससे हायर नहीं कर सकता है। तो आप अगर 5 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज वायर यूज करेंगे तो ऐसे में आपका डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर के बारे में आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम पीरियड होता है हमारा पावर। और आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि पावर को हम लोगों ने वर्क डन बाय टाइम से डिफाइन किया है। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। अब ये वर्क डन सिर्फ सोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं है, ये हमारे जो डिवाइसेस हैं वो उनमें कितना वर्क किया जा रहा है इससे भी हम डिफाइन करते हैं कि उस डिवाइस की पावर कितनी है। क्योंकि हर एक डिवाइस जो बनते हैं उनकी अपनी कुछ पावर रेटिंग होती है। इसका मतलब है कि किसी भी डिवाइस पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा इन अ गिवन टाइम पीरियड ताकि आपका डिवाइस काम कर पाए। तो हर एक डिवाइस की पावर रेटिंग होती है, हर एक डिवाइस की, आपके बल्ब जो घर में होता है उसकी भी पावर रेटिंग होती है, किसी न किसी पर्टिकुलर पावर का वो बनाया जाता है। इसका मतलब है कि वो उतना पावर कंज्यूम करेगा तभी वो वर्क कर पाएगा। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि पावर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई से डिफाइन करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जो होता है पावर का वो कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई होता है, और वी की जगह आप आई आर लिख सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो उससे पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, फिर से आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तीनों ही फॉर्मूले आपको आने चाहिए, या फिर कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लो और ओम्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप लोगों को किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हो सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा और करंट गिवन होगा, पावर पूछ लेंगे, या फिर आपसे जब पावर पूछेंगे तो आपको करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा और पावर पूछ लेंगे, या फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा और पावर पूछ लेंगे। तो आपको तीनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए पावर के। अब जैसा कि बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं हम और बहुत सी बातें कर चुके हैं जिसमें हमने पावर की यूनिट जो है वो वाट यूज की है। वाट जो है वो एसआई यूनिट है, हमारे पावर का एसआई यूनिट है वाट, WATT, इससे लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी डिवाइस ने एक वाट का पावर कंज्यूम किया है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 1 वोल्ट और उस डिवाइस के थ्रू जो करंट पास किया है वो है 1 एम्पियर। तो V इंटू आई पावर होता है। तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर की करंट पास कर रही है उस डिवाइस के थ्रू, तो उसके अक्रॉस जो पावर होगा, उस डिवाइस का जो पावर होगा जो कंज्यूम किया है उसने, वो 1 वाट हो जाएगा। अब ये जो वाट है ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, इसीलिए इसको ना यूज करके हम किलो वाट यूज करते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो यूज़ किया जाता है वो किलो वाट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाट एक बहुत छोटा वैल्यू है, इसे यूनिट के रूप में नहीं यूज़ करते। आपके घरों में जो 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है, 2 यूनिट कंज्यूम हुआ है, इस तरीके से आप जो बताते हैं आपके बिल में, तो वो यूनिट अगर आप बताना चाहते हैं तो उसमें आप वाट ना यूज़ करके हायर वैल्यू यूज़ करते हैं वाट की, किलो वाट यूज़ करते हैं। और उसमें से भी आपके घरों में आपको बताया जाता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको बताते हैं कि 1 यूनिट का पावर कंज्यूम, 1 यूनिट आपने कंज्यूम किया है, या फिर 2 यूनिट कंज्यूम किया, या फिर 3 यूनिट कंज्यूम किया है, तो वो आपको एनर्जी बताते हैं। एनर्जी, अब आपको पावर पता है, आपको एनर्जी पता लगानी हो तो आप कैसे पता लगाएंगे? आपको एनर्जी पता लगाने के लिए पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको जो टाइम आप लेते हैं यूनिट डिफाइन करने में, जो आपकी बिल का यूनिट होता है उसको डिफाइन करने में, आप 1 आवर का टाइम पीरियड लेते हैं, 1 घंटा। तो 1 आवर इंटू पावर, ये यूज करके आप कहते हैं कि 1 यूनिट बन रहा है। तो आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें अगर 1 यूनिट आपको डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब है आपने एनर्जी यहाँ पर बोला है, एनर्जी है ये पावर इंटू टाइम, किलो वाट का मतलब 1000 वाट इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 आवर है। तो इससे क्या हो गया कि आपका एनर्जी आपने डिफाइन किया है, 1 यूनिट आप जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में पढ़ते हैं वो एनर्जी बताता है आपको, और 1 यूनिट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, 1 किलोवाट आवर से करते हैं डिफाइन। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 290 पर एक ऑरेंज बॉक्स बना है जिसमें आपसे बोला कि अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाते हैं जब आपके घरों में बिजली आती है तो उस वक्त आपके घरों में इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने की वजह से आपके घर में बिजली आती है, तो ऐसा सोचना गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इसकी वजह से करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कंजम्पशन से नहीं होता है करंट जनरेट। तो बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, जहां से आपने बिजली की सप्लाई ली हुई है, कनेक्शन करवाई हुई है, तो आपके घरों में जो बिजली की कनेक्शन करवाई है आपने, तो बिजली सप्लाई करने वाले आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एनर्जी कहते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के कंजम्पशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग 1 kWh को जूल्स में कन्वर्ट करें तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1000 वाट इंटू आर, जो है उसको आपको सेकेंड्स में लिखना होगा, क्योंकि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है और 1 kWh तो कमर्शियल यूनिट है, वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए सभी की सभी चीजों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड इस बार जो आया ये हमारा एसआई यूनिट्स में है, पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। तो वाट इंटू सेकेंड जो होगा वो एनर्जी बना सकता है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल्स। उसके बाद आगे इस आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पावर के ऊपर बेस्ड। एग्जांपल 12.12 पेज नंबर 219, इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई, आपको कैपिटल वी की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट, आपको करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर और आपको पावर पूछी है, तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 220 × 0.5, तो आपको आंसर मिलेगा 110 वाट, जो कि आपका पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा बाय द बल्ब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 219 पर है, एग्जाम्पल 12.13, इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 hours पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹30 per kWh। इसके अंदर आप लोगों को बताया कि एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वाट पावर कंज्यूम करता है। अब उसको आपने क्या किया है, अगर आप उसे 8 घंटे चला रहे हैं एक दिन में, तो उससे कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, 400 × 8 hours, तो इससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी एक दिन में जो कंज्यूम हुई है वो कितनी होगी, 400 × 8 hours, तो 400 × 8 watt hour। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि एनर्जी एक दिन में कंज्यूम हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3200 watt hour पर डे आपने आपके रेफ्रिजरेटर ने एनर्जी कंज्यूम की है। अब आप इस रेफ्रिजरेटर को 30 डेज तक यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 3200 × 30 करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि 30 दिन में कितना एनर्जी आपने कंज्यूम करवाया है अपने रेफ्रिजरेटर को यूज करके। तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 96000 watt hour। आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 96 kWh, क्योंकि किलो का क्या मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 96000 watt hour है, तो 96 kWh है। अब आपका जो बिजली का सप्लायर है वो आपसे किस तरीके से पैसे चार्ज करता है, वो आपसे 1 kWh पे 3 रुपए लेता है, और आप कितने kWh कंज्यूम कर रहे हैं, आप 96 kWh कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 96 × 3 कर देंगे, तो उससे मिल जाएगा आपको कि पैसे कितने आपको देने हैं। तो 96 × 3 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 288, तो आप लिखेंगे कि 288 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं जो कि 400 वाट का है, 8 घंटे पर डे और 30 दिन के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद दो क्वेश्चंस और आपसे पूछे हैं पेज नंबर 220 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, what determines the rate at which energy is delivered by a current. यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से मेजर करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं. तो पावर होता है, तो किसी भी डिवाइस के पावर से हम कह सकते हैं कि वो कितना एनर्जी डिलीवर करता है, उसका एनर्जी डिलीवर करने का रेट क्या है. तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ एनी डिवाइस जो है वो बता सकता है कि उस डिवाइस के द्वारा एनर्जी यूज करने का रेट क्या है. रेट वर्ड जहां लिखा होता है ना उसका मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो कहीं पर रेट लिखा होता है वर्ड तो उसका मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पर भी आपसे एनर्जी का रेट पूछा है यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछी है. तो आप कह सकते हैं कि पावर जो होता है अप्लायंसेस का वही बताता है कि एनर्जी का रेट कितना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पीयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन. डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स. यहाँ पर आपसे अगर पावर पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपको V into I करना होगा. V की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट, I की वैल्यू गिवन है 5 एम्पीयर. तो V into I कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1100 वाट. अगर आपको एनर्जी बतानी है तो आपको V into I into T भी करना होगा, टाइम से भी मल्टीप्लाई करना होगा. और टाइम आपको गिवन है 2 आवर्स. तो आपको ऐसा यूनिट्स में बताना होगा. तो आप टाइम जो है 2 आवर्स जो है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा. 2 आवर्स को सेकेंड्स में लिखोगे तो 7200 सेकेंड होता है. 2 आवर्स इक्वल टू 7200 सेकेंड्स. तो 7200 इंटू 1100 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.92 इंटू 10^6 जूल्स. तो ये है एनर्जी कंज्यूम्ड. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है. बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. आपने जो आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज कर लेना है. कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है. हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.